समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी गोल्ड पर आज सवेरे न्यूज मैगजीन प्रोग्राम के आज के एक नए अंक में। और इस कार्यक्रम के साथ ही संघ के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी, साथ हैं सुभद्रा रामचंद्रन। नमस्कार सुभद्रा।
हेलो देवेंद्र, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल यू लवली फोक्स ट्यून्ड इन टू हियर अ ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ आवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। स्टे विद अस फ्रेंड्स, एंजॉय दिस सेशन एंड फॉर स्टार्टर्स वी हैव सम न्यूज हेडलाइंस।
जी, शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले से जारी जल शक्ति अभियान कैच द रेन के अनुरूप है, जिससे दीर्घावधि जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रधानमंत्री मोदी के सामूहिक जल प्रबंधन के दृष्टिकोण को बल मिलेगा। इस कार्यक्रम का लक्ष्य गुजरात में वर्षा जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण में आम लोगों, स्थानीय निकायों और अन्य पक्षों को एकजुट करना है। इसके अंतर्गत समूचे गुजरात में लगभग 24,800 वर्षा जल संरक्षण निकायों का निर्माण सामूहिक भागीदारी से किया जा रहा है। ये निकाय भूमि जल पुनर्भरण संरचनाओं के रूप में काम करेंगे, जिनसे वर्षा जल संचय तथा दीर्घावधि जल प्रबंधन में मदद मिलेगी। इन संरचनाओं से समुदाय संचालित जल संचय के क्षेत्र में गुजरात की सफलता उजागर होगी और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्वों को बढ़ावा मिलेगा। जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम ऐतिहासिक पहल है जो अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय है। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण को सदैव राष्ट्रीय मिशन के रूप में महत्वपूर्ण माना है। और सुभद्रा, जिस तरह से कह सकते हैं जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, लगातार वो कम होते जा रहे हैं, ऐसे में जल संरक्षण का ये जो प्रयास है, खासतौर पर रेनी सीजन में, मॉनसून सीजन में, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता
है। जी, a study published in the prestigious international science journal Nature says Prime Minister Narendra Modi's dream project Swachh Bharat Mission has helped avert around 60,000 to 70,000 infant deaths annually between 2011 and 2020 in India. Researchers from International Food Policy Research Institute, University of California and Ohio State University conducted a khasi experimental study to investigate the association between Swachh Bharat Mission and infant and under 5 mortality rates in India. They studied infant mortality and under 5 mortality data from 35 states and 640 districts between 2011 and 2020. The study said after Swachh Bharat Mission period in India exhibited accelerated reductions in infant and child mortality rate compared to the pre-Swachh Bharat Mission years. An author of the paper, Soira Goon, said their findings confirm that improved water and sanitation conditions may reduce infant mortality, particularly in countries like India, where open defecation was highly prevalent.
जी, जम्मू कश्मीर विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 40 प्रचारकों की घोषणा की है। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। पार्टी के प्रमुख प्रचारकों में वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मनोहर लाल, जी किशन रेड्डी, जितेंद्र सिंह और शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं। 90 सदस्यीय जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए तीन चरणों में चुनाव हो रहा है। पहले चरण में 18 सितंबर, दूसरे चरण में 25 सितंबर और तीसरे चरण के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होगा। मतगणना 8 अक्टूबर को की जाएगी।
Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan has said that floods in Andhra Pradesh damaged crops in 1.8 lakh hectares and affected about 2 lakh farmers as per initial estimates. He said the crops have suffered a lot of damage, especially flowers and turmeric. Mr. Chauhan is on a 2-day visit to Andhra Pradesh and Telangana to assess the flood situation. Agriculture Minister assured of all help to the two states from the central government after completing the assessment of damages. In Andhra, Mr. Chauhan conducted an aerial survey of flood-affected areas in Vijayawada, including Budameru, Jakampudi Milk Factory and Kandrika, inspected the Prakasham Barrage Dam and damaged fields along the Krishna River. Today, Mr. Chauhan is scheduled to visit flood-affected Khammam District and other areas of Telangana.
केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद, यूनानी, योग और होम्योपैथी चिकित्सा के लिए नेशनल एग्जिट परीक्षा नेक्स्ट 2021-22 बैच और उससे आगे के बैचों के लिए अनिवार्य होगी। कल नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री जाधव ने कहा कि इस मामले को लेकर छात्रों की चिंताओं की समीक्षा के लिए गठित समिति की सिफारिश पर यह निर्णय लिया गया है। श्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि समिति ने सिफारिश की है कि एन एग्जिट परीक्षा को राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग अधिनियम और राष्ट्रीय होम्योपैथी अधिनियम आयोग के अंतर्गत 2021-22 शैक्षणिक सत्र में शामिल छात्रों पर लागू किया जाएगा।
The government has extended the deadline for submission of applications by selected meritorious students for the National Means Cum Merit Scholarship Scheme for 2024-25 till the 30th of this month. Union Education Ministry said that under the scheme, scholarships are awarded to meritorious students from economically weaker sections to prevent dropouts after Class 8 and encourage them to complete their school education up to Class 12. The National Scholarship Portal has been open for submission of applications by students since June 30 of this year. The scheme provides 1 lakh fresh scholarships every year for Class 9 students who pass the qualifying exams conducted by the state and union territory governments. The ministry said that scholarships are continued through renewal from class 10 to 12 based on students' academic performance. The scheme is applicable only to students studying in state government, government-aided and local body schools, and the scholarship amount is 12,000 rupees per annum per student.
मौसम विभाग ने पश्चिम और मध्य भारत के कुछ भागों में अगले 4-5 दिनों के दौरान मध्यम से तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि 11 सितंबर तक छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। 9 सितंबर तक तेलंगाना और तटीय कर्नाटक तथा तटीय आंध्र प्रदेश में भी तेज वर्षा होने के आसार हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2 दिनों के दौरान इसी तरह का मौसम बना रहेगा और इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है।
At Paris Paralympics 2024, Kapil Parmar clinched a bronze in Para Judo's men J1 60kg event yesterday by beating Ailton de Oliveira of Brazil 10-0 via an opponent. This is India's first ever Paralympic medal in judo. President Draupadi Murmu congratulated Kapil Parmar over his historic medal. In a social media post, President Murmu said, Kapil has overcome many obstacles and has created history by becoming the first Indian to win a medal in a judo event at Paralympics. Prime Minister Narendra Modi congratulated Kapil Parmar. In a social media post, the Prime Minister said, It is a very memorable sporting performance and a special medal. Today, on the 9th day of the Games, the Indian athletes will aim top spots in athletics and powerlifting.
और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बाद अब हम रुक करते हैं अपने महानगरों की और जानते हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से क्या खबरें हैं। सुभद्रा, आपके पास।
यस देवेंद्र, स्टार्टिंग विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई। The Enforcement Directorate has attached properties worth Rs 55 crore and 30 lakh of Chennai-based businessman Jafar Sadiq, who was accused of smuggling pseudoephedrine abroad under the Prevention of Money Laundering Act. Among the properties attached as proceeds of crime are hotels, luxury bungalows and luxury vehicles acquired through criminal activities. The illicit cash was layered through financiers and recorded as unsecured loans in financial statements. The funds were used to acquire immovable and movable assets in the names of Sadiq, his wife Amina Banu, Maideen Ghani and others. The school education department honored 386 teachers and headmasters with the Dr. Radhakrishnan Award for their contributions to improving education in schools across the state. Teachers received Rs 10,000 cash prize, a silver medal and a certificate of appreciation. Among them, 30 were private schools, 2 from Anglo-Indian schools and 5 differently abled teachers. The school education director, S. Kannappan, said that the awards are to motivate teachers to excel and contribute to the state's educational development. He wanted teachers to learn from each other, exchange ideas and improve teaching methodologies in classrooms. Eligible teachers submitted applications to chief education officers. When teachers did not apply, evaluators visited the schools to assess candidates and recommend them to the district level selection committee. Teachers need at least 4 months of regular service during the academic year to qualify for the award. Getting to Bengaluru now, the Indian Institute of Horticultural Research in Hezargatta near Bengaluru celebrated its 58th Foundation Day yesterday. The Deputy Director General, Education Division of ICAR, Dr. Rakesh Chandra Agarwal, spoke on horticulture and its employment generation capabilities in Amrit Kal. He stressed that there is a paradigm shift in the application of digital technologies, artificial intelligence, and cutting-edge research techniques like genome sequencing. He further added that agriculture education in India is in a transition phase of innovative reforms. During the Foundation Day by IIHR Horticulture Research Institute, 7 publications were released and 7 MOUs were exchanged for technology transfer. Getting to Hyderabad now, Telangana Disaster Response and Fire Services Department has conducted over 1,700 rescue operations over the last 1 week across the state. Majority of these operations are evacuating residents from the flooded houses and vehicles in the flood-affected districts. As per the department authorities, from last month, 31st till 4th of this month, the teams of the department have rescued 1,690 people from flooded houses and 48 people from submerged vehicles. Additionally, 13 operations were carried out to clear uprooted trees, while 4 cases involved retrieval of dead bodies. The rescue teams were also involved in dewatering 3 flooded areas and carrying out a rescue operation after a wall collapsed. In Telangana, after a spell of heavy rain that resulted in severe flooding in parts of the state, the Met authorities have issued an orange alert in the region, as more rains are likely over the next 5 days. Shortly after the brief respite from the incessant rains that wreaked havoc in the state, a new weather system has developed over the region that is expected to bring heavy to very heavy rains in isolated places. The earlier rains in the state have resulted in damage to roads, disrupted railways, and flooded farms. The Weather Department issued an orange alert in Jaishankar, Bhopalpalli, and Mulugu districts yesterday, while an yellow alert has been issued for heavy rainfall accompanied by thunderstorms and strong winds for most parts of the state till Monday next. And Devendra, over to you now for rest of the news.
जी, दिल्ली की खबरों की बात करें तो केंद्र सरकार ने प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर और मुंबई में 35 रूपये प्रति किलोग्राम की रियायती दरों पर प्याज की बिक्री की शुरूआत की है। प्याज की बिक्री नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की खुदरा दुकानों और ई कॉमर्स प्लेटफार्म पर की जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय भंडार, सफल आउटलेट और मोबाइल वैन के माध्यम से भी प्याज की बिक्री की जाएगी। शिक्षक दिवस के अवसर पर देशभर के शिक्षकों ने कल राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान में भ्रमण किया। शिक्षकों ने उद्यान में बने बोनसाई गार्डन, रोज गार्डन और सेंट्रल लॉन में विशेष किस्म के फूलों का भी अवलोकन किया। शिक्षक दिवस के अवसर पर देशभर के शिक्षकों को राष्ट्रपति भवन ने अमृत उद्यान आने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया था और आगंतुकों के लिए अमृत उद्यान 15 सितंबर तक खुला हुआ है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच उद्यान में निःशुल्क भ्रमण कर सकते हैं। उद्यान देखने के लिए टिकट राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट से बुक किए जा सकते हैं। भाजपा के सदस्यता अभियान के अंतर्गत कल भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा की पार्टी सदस्यता को रिन्यू करके किया गया। इस मौके पर भाजपा सांसद योगेंद्र चंदुलिया भी उपस्थित थे। डॉ अग्रवाल ने कहा कि भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। दिल्ली नगर निगम द्वारा शहर में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 14 सितंबर से स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत शहर के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। निगम के अधिकारियों ने बताया कि निगम ने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए विस्तृत योजना तैयार की है। यह अभियान 1 अक्टूबर तक चलेगा। और चलते हैं मुंबई तो महाराष्ट्र सरकार ने 1,17,220 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि अडानी समूह और टावर सेमीकंडक्टर पनवेल के तलोजा में 83,947 करोड़ रूपये की लागत से एक सेमीकंडक्टर उत्पादन संयंत्र स्थापित करेंगे। इस परियोजना से 15,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। स्कोडा द्वारा पुणे के चाकन में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का एक और निवेश किया जाएगा, जिससे 1,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। टोयोटा किर्लोस्कर 21,273 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ छत्रपति संभाजी नगर में एक सुविधा स्थापित करेगा, जिससे लगभग 12,000 रोजगार सृजित होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के अंतर्गत करीब 4,787 करोड़ रुपए जारी किए हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार 1,59,00,000 लाभार्थियों के खातों में सीधे 3,000 रुपए जमा किए गए हैं। सरकार ने बताया कि पात्र महिलाओं से आवेदन 30 सितंबर 2024 तक स्वीकार किए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने अगले 5 वर्षों में पूरे महाराष्ट्र में 1,000 ड्रीम विलेज विकसित करने के लिए स्वदेश फाउंडेशन के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार फाउंडेशन पहले से ही रायगढ़ में 7 और नासिक में 4 तालुकाओं को विकसित करने पर काम कर रहा है। ये गांव सतत विकास के लिए एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में काम करेंगे। फाउंडेशन स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ जल और स्वच्छता सुविधाओं के साथ साथ आर्थिक विकास पर ध्यान केन्द्रित करेगा। और महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की एक स्थानीय अदालत ने मूर्तिकार जयदीप आपटे और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल को 10 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची मूर्ति गिरने के करीब 10 दिन बाद गुरुवार को दोनों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि कानून के सामने सभी समान हैं और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए आपटे की पूरी जांच की जाएगी। और चलते हैं कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कल डॉ वेरूपाक्ष विश्वास और डॉ अविक डे को उनके खिलाफ राज्यभर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर निलंबित कर दिया है। इनका नाम कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पीजीटी डॉक्टर के साथ विभत्स बलात्कार हत्या मामले के बाद सामने आया था। उन पर लंबे समय से पश्चिम बंगाल के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टरों के साथ साथ शिक्षकों को धमकी देने के आरोप हैं। डॉ वेरूपाक्ष विश्वास वर्धमान मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी विभाग के एक वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर हैं और डॉ अविक डे उसी मेडिकल कॉलेज के रेडियो डायग्नोसिस विभाग के रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर हैं और कोलकाता में एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पीजीटी हैं। वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट और ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स वेस्ट बंगाल के सदस्य लंबे समय से राज्य सरकार को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के गिरफ्तार पूर्व प्रिंसिपल डीआर संदीप घोष के साथ कई अवैध गतिविधियों में उनकी कथित संलिप्तता के बारे में रिपोर्ट करते रहे हैं। महानगरों की खबरों के बाद अब हम जान लेते हैं महानगरों के मौसम का हाल भी। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल बरसात हुई कई जगहों पर, पिछले 2-3 दिनों से कई जगहों पर बरसात हो रही है और आज भी बादल छाए रहने और कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि बादल छाए रहेंगे और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। और इसके साथ सुभद्रा, सुबह का मौसम बहुत ही सुहावना लग रहा था क्योंकि बारिश हो रही है। मुंबई में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की से वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम 30 डिग्री रह सकता है। कोलकाता में आंशिक बादल छाने की संभावना तो है लेकिन बहुत अच्छी बारिश की उम्मीद यहां पर नहीं है। बारिश हल्की हो सकती है। तापमान 35 और 28 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद का मौसम आप बताइए सुभद्रा।
यस देवेंद्र, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव थंडरस्टॉर्म विद रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 27 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 36 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। The minimum temperature was 21 degrees Celsius, maximum will be around 30 degrees. Hyderabad, again, expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 22 degrees Celsius and a maximum of 29 degrees Celsius.
और इतिहास में दर्ज आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करें तो आज के दिन यानी 6 सितंबर के दिन 1869 में पेंसिल्वेनिया के अवुंदेल में एक खदान में आग लगने से 110 लोग मारे गए थे।
1642, the English Long Parliament issued an ordinance ordering the closure of London theatres, including the Globe Theatre, once part owned by William Shakespeare.
जी, और 1914 में फ्रांस और जर्मनी के बीच मारने का युद्ध शुरू हुआ था। 1939 में दक्षिण अफ्रीका ने नाजी जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की थी।
द इंडियन पार्लियामेंट मेड अ हिस्टोरिक मूव ऑन सितंबर 6, 1990, पासिंग द प्रसार भारती एक्ट। दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ अ पब्लिक ब्रॉडकास्टर नोन एज प्रसार भारती। इट केम इनटू इफेक्ट ऑन सितंबर 15, 1997।
जी, और वर्ष 1952 में कनाडा टीवी की मॉन्ट्रियल में शुरूआत हुई थी।
1984, Amadeus premiered in Los Angeles. The film was based on the play by Peter Schaeffer, which dramatized the rivalry between composers Wolfgang Amadeus Mozart and Antonio Salieri. The film was directed by Milos Forman and starred Tom Hulce as Mozart. It won 8 Academy Awards, including the Best Picture. In 1995, this day, new broad gauge train Palace on Wheels started between Delhi, Uttar Pradesh, and Rajasthan. And friends, 1997, British rock pianist, composer, singer Elton Elton John sings a new version of Candle in the Wind at Princess Diana's funeral. This rendition, which replaces Goodbye Norma Jean with Goodbye English Rose, becomes a best-selling single of all time in the United Kingdom.
जी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान द्वारा संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी शिखर सम्मेलन का शुभारंभ आज ही के दिन वर्ष 2000 में किया गया था.
And 2006, New Moon was published by Little Brown. It was the second book in Stephanie Meyer's Twilight Saga, which followed the romance between human Bella Swan and vampire Edward Cullen. The book sold 5.3 million copies in 2015.
2007 में ब्रिटेन की द ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी अथॉरिटी ने मानव पशु संकर भ्रूण पर शोध करने के लिए सिद्धांत रूप से अनुमति दी थी. और अब आगे बढ़ते हैं, याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है. याद कर रहे हैं भारतीय सेना के एक ऐसे जांबाज मेजर को जिन्हें 1962 के भारत चीन युद्ध में उत्कृष्ट परमवीर चक्र प्रदान किया गया. उस युद्ध को लड़कर जीवित बचने वाले उस वीर का नाम था धन सिंह थापा, जो गोरखा राइफल्स में मेजर थे. युद्ध के दौरान उन्हें चीनी सेना ने पकड़ लिया था. उन्होंने चीन की बर्बर सेना की यातनाएं झेली और जो यातनाएं झेली वो भयावह थी. धन सिंह थापा इस युद्ध में पान गोंगसो झील के तट पर सीरी जाप मोर्चे पर तैनात थे, जहां उनके पराक्रम ने उन्हें परमवीर चक्र के सम्मान का अधिकारी बनाया. युद्धबंदी से मुक्त होकर भारत आने के बाद उन्होंने भारतीय फौज को फिर से अपनी सेवाएं दी और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सेवानिवृत्त हुए. मेजर धन सिंह थापा ने 6 सितंबर 2005 को इस दुनिया को अलविदा कहा.
Tribute to music legend friends who was affectionately called Baba. I am talking about Ustad Alauddin Khan, who rose to become a multi-instrumentalist, but he loved Sarod the most. At the age of 10, he joined a jatra, that was the traditional Bengali street theater that exposed him to folk music, and then went on to study vocal classical music before he turned to those wonderful music instruments.
Gee. मशहूर सरोद वादक और भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे बड़े घरानों में से एक मैहर घराने की नींव आपने रखी. संगीत की दुनिया में उनके योगदान के लिए अलाउद्दीन खान को 1958 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया. अलाउद्दीन खान ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को दुनिया के अन्य देशों में पहुंचाने का काम किया. भारतीय शास्त्रीय संगीत अपने वास्तविक स्वरूप में जीवित रहे और वक्त के साथ इसका विकास होता रहे, इसके लिए उस्ताद अलाउद्दीन खान ने मैहर कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना की. उस्ताद अलाउद्दीन खान को 1952 में संगीत नाटक अकादमी की ओर से पुरस्कृत किया गया और भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से भी सुशोभित किया था.
Baba has groomed some of, you know, the greatest instrumentalists of our time, most notably his son and disciple Ustad Ali Akbar Khan, Sarod, and his daughter Annapurna, her real name was Roshanara Khan, Pandit Panalal Ghosh, Bansuri, and Pandit Nikhil Banerjee, Sitar. Even so, perhaps his most famous pupil remains Pandit Ravi Shankar, who went on to make the sitar a world-famous Indian instrument. Of course, right now, flowing from the strings of Sarod now, you're already listening to it, a tune set to Raag Behaag, played by the maestro, Alauddin Khan. In 2007, Italian operatic lyric tenor Luciano Pavarotti, who was considered one of the finest bel canto opera singers, passed away at the age of 71 after battling pancreatic cancer. Even in the highest register, his voice was noted for his purity of tone, his concerts, recordings and television appearances, which provided him ample opportunity to display his cheerful personality, gained him a wide popular following. A snatch of that beautiful prayer, Ave Maria, sung by Pavarotti.
Yeah.
Actor Burt Reynolds, one of Hollywood's biggest stars of the 70s, in films including Deliverance and Smokey and the Bandit, passed away this day in 2018. And friends, Tom Fogerty, rhythm guitar player for Creedence Clearwater Revival, dies from an AIDS-related tuberculosis infection in Scottsdale, Arizona at age 48. Sadly, he had contracted HIV from blood transfusions. His band, the Creedence Clearwater Revival, or the CCR, comprised of brothers John and Tom Fogerty, Stu Cook, Doug Clifford, had played together. The band comprised of brothers John and Tom, of course, sold more than 86 million records with 6 gold albums. The remaining members continued as a trio until they disbanded in 1972. A song to remember Tom, Rhythm Man, here goes.
Just about a year ago, I set out on the road, seeking my fame and fortune, looking for a pot of gold. Things got bad and things got worse, I guess you know the tune. Oh Lord, stuck in a low die again.
और अब बात करते हैं हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक राकेश रोशन की। 1949 में आज ही के दिन यानी 6 सितंबर को राकेश रोशन का जन्म हुआ। इनके पिता मशहूर संगीतकार रोशन हैं, संगीतकार राजेश रोशन इनके बड़े भाई और अभिनेता ऋतिक रोशन के ये पिता हैं। राकेश रोशन ने 1970 से 1990 के दशक के आखिरी वर्षों तक बतौर अभिनेता कई फिल्मों में काम किया। राकेश रोशन ने 1987 से बतौर निर्देशक सिने प्रेमियों के लिए एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई, जिनमें अधिकांश फिल्मों के नाम के से शुरू होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम खुदगर्ज, खून भरी मांग, किशन कन्हैया, करण अर्जुन, कहो ना प्यार है, कोई मिल गया, कृष जैसी कई लोकप्रिय फिल्मों को याद कर सकते हैं। लेकिन उनकी एक फिल्म का गाना आइए आपको सुनाते हैं, जिस पर उन्होंने खुद अभिनय किया है।
जिंदगी फिर भी यह खूबसूरत है। जिस दिन पैसा होगा वो दिन
Cambridge, England saw a birth this day in 1943. Bassist, composer, founder, member of progressive, psychedelic, iconic rock outfit Pink Floyd, Roger Waters turns a year older. The most creative member who was responsible for the band's concept albums, Dark Side of the Moon, The Wall, Animals, and Wish You Were Here. Happy birthday, Roger. Birth anniversary of Dolores O'Riordan, singer-songwriter, the lead vocalist, lyricist for the alternative rock band The Cranberries, most recognizable voices in rock in the 1990s, had a great fan following. Sadly, this lady, she died of chemical addictions, took her life at the age of 46 in 2018.
और श्रोताओं, हमें अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड और आकाशवाणी के अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।
नमस्कार।